मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स में 100 से अधिक कोविड 19 के नए मामले, लॉकडाउन का 5वां सप्ताह। विक्टोरिया को उम्मीद है कि योजना के अनुसार मंगलवार को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और भारत में आज करगिल विजय दिवस। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स संकट कैबिनेट की आज सोमवार को बैठक हुई, जिसमें पिछले दिनों स्थानीय रूप से अधिग्रहित 145 नए मामले दर्ज करने को लेकर राज्य के कोरोना वायरस के प्रकोप पर चर्चा हुई। इस नवीनतम कोविड-19 प्रकोप के दौरान 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। अधिकारी ग्रेटर सिडनी के लिए घर में रहने के लॉकडाउन आदेशों को नियंत्रित करने की उम्मीद कर रहे हैं। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैरी चेंट का कहना है कि महत्वपूर्ण कार्यस्थलों और घरों में वायरस का संचरण हो रहा है, लेकिन टीके इस प्रसार को समाप्त करने में भूमिका निभा सकते हैं। उनका कहना है कि शहर में बार बार घूमने वाले युवाओं का टीकाकरण करने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
We are leaving no stone unturned in terms of how to recalibrate or our vaccine strategy. To actually have a much more targeted focus on where on the communities of southwestern Sydney and understand best how to use the available vaccine, noting that there is no supply constraints around AstraZeneca. And as I've indicated, it's a very effective vaccine.
टीकाकरण पर ऑस्ट्रेलियन तकनीकी सलाहकार समूह का कहना है कि सिडनी में हर किसी को एस्ट्राजेनेका सहित कोई भी टीका उपलब्ध होना चाहिए। फेडरल सरकार ने विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की प्रशंसा की है कि किस तरह से लॉकडाउन सफल हो रहा है, और इसके साथ ही न्यू साउथ वेल्स को कोविड-19 के खिलाफ अपनी कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। फेडरल स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट रिपोर्ट कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में कुल मिलाकर 165 कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ राज्यों में लॉकडाउन में स्वास्थ्य प्रतिबंधों में ढील दी गई है। श्री हंट का कहना है कि GPs ने 5.8 million टीकाकरण किए हैं।
It is critical that we have as many people come forward as soon as possible. So, no matter where you are in the country, this disease can strike you. It is a global pandemic.
नॉर्दर्न टेरिटरी के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है कि क्या फेडरल सरकार अन्य राज्यों को दिए जाने वाले फाइजर टीके न्यू साउथ वेल्स को भेज रही है। लेबर नेता माइकल गनर इस बात से चिंतित हैं कि फाइजर की अतिरिक्त खुराकें कहां से आई हैं और उन्हें पहले ही टीकाकरण के लिए राज्यों या टेरिटरीज में क्यों नहीं भेजा गया है। श्री गनर का कहना है कि कोरोना वायरस एक आपात स्थिति है और राष्ट्रीय कैबिनेट को पहले बताया गया था कि वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया में उतरने के तुरंत बाद वितरित की जा रही है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर स्टीवन मार्शल का कहना है कि उनका राज्यव्यापी लॉकडाउन मंगलवार को यानी कल 27 जुलाई को समाप्त होने वाला है, लेकिन सभी प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे और राज्य सरकार न्यू साउथ वेल्स में फंसे दक्षिण ऑस्ट्रेलियन लोगों को लेकर चिंतित है। मंगलवार से शुरू होने वाले कम से कम एक सप्ताह के लिए घरेलू समारोहों को 10 बजे तक सीमित कर दिया जाएगा, स्कूल फिर से खुलेंगे और उच्च जोखिम वाली सेटिंग में मास्क का उपयोग लागू होगा। श्री मार्शल कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सामान्यता की ओर बढ़ना शुरू कर सकता है।
We've looked at chasing down every single transmission chain that we've been given. We have 79 exposure sites in South Australia. We have a large number of people that we are monitoring and a huge number of people who are in directed quarantine either at home or in our Medi hotels.
क्वींसलैंड पुलिस का ये जोर देकर कहना है कि जापान से लौटने के बाद प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे एक साधारण होटल के कमरे में संगरोध पूरा कर रही हैं। अफवाहें सामने आई थीं कि वो उस अवधि के लिए एक लग्जरी स्वीट में थीं। डेप्यूटी पुलिस कमीशन स्टीव गोल्डशेफ्स्की ने इसका खंडन किया और कहा कि प्रीमियर को सुरक्षा की आवश्यकता है।
So, as you would be aware, the Premier in particular is a person that's under protection. So the room that she is in has been selected in consultation with the Queensland Police Service so that we can provide her with appropriate protection To that end, I'm not going to get into the details of where she is and where she isn't. That's not really anyone's concern.
राज्य सरकार का कहना है कि प्रीमियर का कमरा कई अन्य लोगों ने भी इस्तेमाल किया है और क्वींसलैंड ने सोमवार को कोविड-19 का एक नया सामुदायिक मामला दर्ज किया। विक्टोरियन सरकार का कहना है कि वो सबसे ताज़ा आंकड़ों के आधार पर ही ये तय करेगी कि मंगलवार को लॉकडाउन समाप्त होगा या नहीं। राज्य ने आज सोमवार 26 जुलाई को केवल 11 नए स्थानीय कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं और सभी अपनी संक्रामक अवधि के दौरान अलगाव में थे। विक्टोरिया के स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फोले का कहना है कि प्रतिबंधों में ढील के लिए अभी तक एक निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि अधिकारी जोखिम का मापदंड करते हैं।
Our public health officials will make a decision based on the amalgamation of all that real-time, most up-to-date information, and we'll have more to say about what the steps out of this current set of restrictions will look like tomorrow morning.
Federal Treasurer Josh Frydenberg के प्रतिरोध के बावजूद ग्रीन्स जॉब कीपर वेतन सब्सिडी को फिर से शुरू करने का आह्वान कर रहे हैं। श्री फ्राइडनबर्ग का कहना है कि भुगतान तब उपलब्ध था जब पूरे देश में पिछले साल लॉकडाउन था और वर्तमान समर्थन उपायों को और अधिक तेजी से वितरित किया जा रहा है, लेकिन ग्रीन्स के नेता एडम ब्रंट का कहना है कि जॉब कीपर को बहाल करने की आवश्यकता है और जॉब सीकर को हटाना चाहिए ताकि सीमित धन के साथ संघर्ष कर रहे वर्कर्स के लिए बेहतर समर्थन उपलब्ध हो।
One lesson from Victoria is that insecure work and poverty spread the virus. As people are forced to go from job to job and make those terrible choices about whether to look after their health or try and secure an income, it makes it harder for the public to get on top of the virus.
फेडरल सरकार ने प्रवासी कृषि श्रमिकों को वंचित और शोषित करने वाले कदाचार यानी मिसकंडक्ट को रोकने के लिए एक ड्राफ्ट योजना का अनावरण किया है। इमिग्रेशन मंत्री एलेक्स हॉक का कहना है कि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कुशल प्रवासियों और वर्कर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठा एक सकारात्मक गंतव्य के रूप में बनी रहे। प्रस्तावित कानून के तहत प्रवासी कृषि कर्मचारियों का लाभ उठाने वाले मालिकों पर आपराधिक अपराध और जुर्माना लागू होगा। और भारत में करगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में इस युद्ध में मृत सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आज द्रास में तोलोलिंग पहाड़ी की तलहटी में स्थापित युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि आज करगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए करगिल में अपनी जान दे दी। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरित करती है। करगिल दिवस की पूर्व संध्या पर तोलोलिंग, टाइगर हिल और अन्य लड़ाइयों को याद किया गया और लद्दाख के द्रास इलाके में स्थापित करगिल युद्ध स्मारक पर 559 दीप जलाए गए। ऑपरेशन विजय के दौरान कई प्रेरणादायक कहानियों को याद करने के लिए विशेष कार्यक्रम सेना ने द्रास के पास नेमोचन में कल रविवार सुबह आयोजित किया, जिसमें कारगिल युद्ध के कई वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और उनके परिजनों समेत बड़ी संख्या में सैनिकों ने हिस्सा लिया। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 73 सेंट और भारत के 54.71 रुपए के बराबर है। और खेल समाचारों में, ऑस्ट्रेलियन तैराक एरियन टिटमस ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं की तैराकी टीम द्वारा 4x100 मीटर रिले रेस जीतने के बाद इस 20 वर्षीय का पहला ओलंपिक खेल और ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्वर्ण पदक है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी मंगलवार को पर्थ में बौछारों में राहत, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री। एडिलेड में बौछारें बढ़ेंगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में देर तक बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। कैनबरा में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री और डार्विन में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।